नमस्कार, मैं हूं नगमा। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम। पिछले कुछ दिनों से कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई के देश भर के ठिकानों पर छापेमारी, बरामद दस्तावेजों और 200 से ज्यादा गिरफ्तारियों का नतीजा सामने आ गया है। केंद्र सरकार ने पीएफआई पर 5 साल की पाबंदी लगा दी है। इसके अलावा पीएफआई से जुड़े 8 संगठनों रिहैब इंडिया फाउंडेशन, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल, नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल वुमेन्स फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन और रिहैब फाउंडेशन केरल पर भी पाबंदी का फैसला किया गया है। गृह मंत्रालय ने पीएफआई और सहयोगी संगठनों पर पाबंदी लगाने के ऐलान के साथ कई दलील दी है। कहा कि सार्वजनिक तौर पर पीएफआई सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संगठन है, लेकिन ये और इसके सहयोगी संगठनों का गुप्त एजेंडा एक वर्ग विशेष को कट्टर बनाना है। ये लोकतंत्र की अवधारणा को कमजोर करने की दिशा में काम करता है, संवैधानिक ढांचे के प्रति घोर अनादर दिखाते हैं। पीएफआई और इसके सहयोगी संगठन गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल हैं, देश की अखंडता, संप्रभुता और सुरक्षा के खिलाफ हैं। इनसे शांति और सांप्रदायिक सद्भाव का माहौल खराब होने की आशंका है, देश में उग्रवाद को प्रोत्साहन मिलने की आशंका है। यह भी कहा गया कि पीएफआई के संस्थापक सदस्य सिमी के नेता रहे हैं, सिमी जो कि प्रतिबंधित संगठन है, और पीएफआई का संबंध जेएमबी से भी रहा है। पीएफआई के आतंकी संगठन आईसिस के साथ संपर्क के कई उदाहरण हैं। असुरक्षा की भावना बढ़ाकर एक समुदाय के कट्टर पंथ को बढ़ावा देने का काम यह संगठन करता है। इसके कुछ सदस्य अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठनों से जुड़े हैं। अगर पाबंदी नहीं लगाई गई तो ये अपनी विध्वंसात्मक गतिविधियां जारी रखेंगे।
के द्वारा जांच हो रही थी और जिस तरह से एविडेंस मिलेंगे, ये मैंने कल ही कहा, उसी के अनुरूप ये कार्रवाई की गई है और आने वाले समय में भी जैसी सूचनाएं मिलेंगी उसके आधार पर हम कार्रवाई करेंगे। खतरनाक नहीं होता तो बैन थोड़े न करना पड़ता। बैन किया गया है तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ ऐसी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का उनका प्रमाण होगा, जो आने वाले समय में एनआईए स्वयं आप लोगों से साझा करेगी।
दरअसल पिछले कुछ दिनों से पीएफआई से जुड़े ठिकानों पर लगातार छापे चल रहे थे। पहले 15 राज्यों में पीएफआई से जुड़े लोगों और ठिकानों पर कार्रवाई हुई और फिर मंगलवार को 7 राज्यों में एक साथ छापे डाले गए। छापों में कई आपत्तिजनक दस्तावेज और अवैध हथियार बरामद करने का भी दावा किया गया। छापों के दौरान कई इलाकों में पीएफआई कार्यकर्ता हिंसा और आगजनी पर उतर गए। साफ था कि सरकार पीएफआई के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जमीन तैयार कर रही थी। आज सरकार ने 5 साल की पाबंदी का ऐलान कर ही दिया। खुफिया एजेंसियों का दावा है कि पीएफआई का एक हिट स्क्वाड भी था जो आरएसएस नेताओं को निशाना बनाने की फिराक में था। एजेंसियों को यह जानकारी 2020 में पीएफआई से ही जुड़े संगठन सीएफआई के महासचिव रऊफ शरीफ ने दी। हाल में कर्नाटक में एक हिंदूवादी संगठन से जुड़े व्यक्ति प्रवीण की हत्या का आरोप भी आरपीआई पर है। बिहार में 11 जुलाई को एक बुकलेट पकड़ी गई जिसमें 2047 तक भारत को इस्लामी राष्ट्र बनाने की बात है, गजवाए हिंद। पीएफआई पर राजनीतिक हिंसा के कई आरोप पहले से लगते रहे हैं। पीएफआई पर टेरर फंडिंग का आरोप भी है। अधिकतर राजनीतिक दलों ने पीएफआई पर 5 साल की पाबंदी को सही ठहराया है, लेकिन कई विपक्षी दलों ने इसके साथ ही आरएसएस को भी कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की है।
देखिए, देश विरोधी गतिविधियों का हिस्सा कोई भी होगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और जो देश विरोधी गतिविधियों का हिस्सा है उनको अगर ये नहीं जानकारी है कि यह माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाला नया भारत है, यहाँ देश के खिलाफ साजिश करोगे तो भी कुछ ले जाओगे, देश में हिंसा फैलाओगे तो भी रोके जाओगे, और देश के दुश्मनों की आज्ञा लेकर के और देश के विरुद्ध साजिश करके और देश को दहलाने की, देश में हिंसा फैलाने की, देश में का माहौल खराब करने की अगर कोशिश की जाएगी तो उसका जवाब निश्चित तौर से मिलना
चाहिए। बैन ऑन पीएफआई, ऑल्दो इट शुड हैव बीन डन अर्लियर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, हैज कम इन टुडे, सो वी वेलकम दिस स्टेप टेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, बट द क्वेश्चन स्टिल रिमेन्स दैट व्हाई डिड इट टेक सो लॉन्ग फॉर द गवर्नमेंट टू गेट टू द बॉटम ऑफ द सोर्स ऑफ फंडिंग और विद रिस्पेक्ट टू द पीएफआई इटसेल्फ।
पीएफआई का जांच हो रहा है और पीएफआई के तरह जितने भी संगठन हैं इंक्लूडिंग आरएसएस, ऐसा पर प्रतिबंध लगाया।
ये संगठन ऐसे संगठन हैं जिनके बिल्कुल एक्सट्रीमिस्ट विचार हैं और उनके एक्टिविटीज भी बहुत वायलेंट है और जो उनके समझ में उनके विरोधी है उनके ऊपर अटैक भी किए, जैसे सीपीएम के ऊपर पता नहीं कितने बार अटैक उन्होंने किया। तो उनके विचार, इनके काम, निश्चित रूप पर उसका विरोध करना और जो हम कर रहे हैं वो बहुत सख्त जरूरी है, लेकिन पाबंदी लगाना यूएपीए के आधार पर इसका कोई हल नहीं निकलेगा। सख्त तरीके से पीएफआई की जहां जहां उनकी गलत गतिविधियां है उन पर बिल्कुल बहुत सख्त तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए।
उधर एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि वो पीएफआई की चरमपंथी हरकतों का समर्थन नहीं करते लेकिन इस तरह की पाबंदी खतरनाक है।
मैंने हमेशा पीएफआई की जो ये रेडिकल एक्सट्रीम अप्रोच है उसका हमेशा मैं अपोज किया हूं और करता रहूंगा चाहे कोई रेडिकल एक्सट्रीम अप्रोच अडॉप्ट करेगा, मगर ये बैन इसलिए हम सपोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि चंद इंडिविजुअल अगर कोई क्राइम करते हैं उस बिना पर अगर आप ऑर्गेनाइजेशन को बैन करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि मियर एसोसिएशन विद एन ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट इनफ टू कन्विक समवन, और इस यूएपीए के कानून में कई मुसलमान बरसों जेल में रहते हैं उसके बाद कोर्ट उनको बरी करता है। मैं हमेशा यूएपीए को अपोज किया हूं और उसको अपोज करता रहूंगा।
तो सवाल यह है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई है क्या, क्यों इस पे प्रतिबंध लगा है? पीएफआई का जो गठन हुआ वो 2001 में स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी सीमी पर पाबंदी के बाद किया गया। ये संगठन 2007 में तमिलनाडु में अस्तित्व में आया जब तीन मुस्लिम संगठन नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट इन केरल, कर्नाटक फोरम फॉर डिग्निटी और मनीथा नीति पासराई को एक साथ मिलाकर नया संगठन पीएफआई बनाया गया। फरवरी 2007 में बेंगलुरु की एक रैली में इसे औपचारिक तौर पर लॉन्च किया गया। पीएफआई का दावा है कि वो हाशिए पर रह रहे लोगों, जो लोग हाशिए पर रह गए हैं, छूट गए हैं, ऐसे लोगों को, अल्पसंख्यकों को, अनुसूचित जाति के लोगों के हक की लड़ाई लड़ता है। पीएफआई कांग्रेस, बीजेपी और कर्नाटक की जेडीएस सरकार की नीतियों से भी इत्तेफाक नहीं रखता। पीएफआई का कहना है कि मुस्लिमों के लिए सामाजिक काम करता है वो, लेकिन सदस्यता का कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं रखता है। पीएफआई के गठन के दो साल बाद इसी की राजनीतिक शाखा के तौर पर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यानी एसडीपीआई का गठन हुआ। बताया गया कि एसडीपीआई मुस्लिमों, अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के राजनीतिक हित के मुद्दे उठाएगा। खास बात यह है कि पीएफआई की एसडीपीआई को पाबंदी के दायरे में से बाहर रखा गया है। सरकार का कहना है कि राजनीतिक संगठन है जिस पर कार्रवाई का अधिकार चुनाव आयोग को है, जबकि एसडीपीआई का कहना है कि उसका किसी कट्टर गतिविधि से वास्ता नहीं है।
पीएफआई से कभी कोई हमारी किसी तरह की मीटिंग नहीं है, वो ऑर्गेनाइजेशन है और हम सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया है। तो अब जो है मसला यही है कि कोई भी रूलिंग पार्टी के खिलाफ अगर कोई पार्टी खड़ी होगी तो वो अपना अंजाम जेल समझ ले।
हालांकि इस पर बैन नहीं लगा है, ये पॉलिटिकल विंग बताया जाता है पीएफआई का। एसडीपीआई जो है केरल जो पीएफआई का गढ़ रहा है वहां पे विपक्षी कांग्रेस और उसकी सहयोगी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने भी इसे सही ठहराया है और कहा है कि इस कट्टरपंथी संगठन ने कुरान की गलत व्याख्या करके मुस्लिम समुदाय के युवाओं को हिंसा के रास्ते पर धकेलने और समाज में नफरत पैदा करने की साजिश की है, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। कांग्रेस नेता रमेश चेन्नीथला ने भी पीएफआई पर पाबंदी के फैसले को सही ठहराया है लेकिन साथ ही मांग की है कि आरएसएस पर भी ऐसी पाबंदी लगाई जानी चाहिए। उनका कहना है कि बहुमत की सांप्रदायिकता हो या अल्पमत की सांप्रदायिकता, दोनों का बराबर विरोध किया जाना चाहिए। उनका आरोप है कि दोनों ही संगठन समाज में दरार डालने के लिए सांप्रदायिक भावनाएं भड़काते हैं। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ खास मेहमान जुड़ी हैं वृंदा करात, नेता सीपीएम, और हमारे साथ आगे चर्चा में जुड़ेंगे नवल किशोर और आलोक वत्स। लेकिन सबसे पहले बात वृंदा करात जी से, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। और मैं आपसे पहले आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहती हूं कि इस पाबंदी को, इस प्रतिबंध को आप कैसे देखती हैं? क्या आप इसे एक हल के तौर पर देखती हैं कि अगर ये कट्टरवादी संगठन है या हिंसक गतिविधि में शामिल रहा तो इसके बैन करने से क्या इस मसले का हल होगा? ये तो जरूर होगा कि इसकी जो एक्टिविटीज हैं अगर संदिग्ध तो उसमें कुछ डिसरप्शन आएगा।
डिसरप्शन से तो हल नहीं निकलता है ना, और जो अनुभव रहा है, आरएसएस पर बैन लगी थी, सिमी पर भी बैन लगी थी, माओइस्ट पर भी बैन लगी थी, लेकिन उस बैन के बाद उस संगठन खत्म नहीं हुए, अलग नाम से, अलग तौर तरीके से। आपने खुद जो पीएफआई की हिस्ट्री बताई उसे स्पष्ट है कि बैन से कोई संगठन की डिसरप्शन के नाम पर आप यूएपी इस्तेमाल करेंगे, ये देश को आप गुमराह कर रहे हैं। हकीकत क्या है? पीएफआई के एक्सट्रीमिस्ट व्यूज है, इसमें कोई शक नहीं है। पीएफआई की वायलेंट एक्टिविटीज रहे, इसमें कोई शक नहीं है। सरकारी नोटिफिकेशन में नगमा जी लिखा है कि ये लोग संविधान को स्वीकार नहीं करते, नहीं मानते हैं, तो यही अगर मापदंड दिया जाए तो और बहुत संगठन है
जी।
सनातन संस्था है, जन जागृति मंच है, जिनकी कोई कम उग्रवाद या कम हिंसात्मक कार्रवाई नहीं रही। लेकिन हमारा ये मानना है, मेरी पार्टी का ये मानना है कि बैन की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि अगर कोई सरकार की राजनीतिक दृढ़ता है संविधान के प्रति और संविधान की रक्षा के लिए, हमारे देश में इतने कानून मौजूद है जो सख्त से सख्त कार्रवाई की जा सकती है
जी।
अब आप केरल को ही ले लीजिए, जब रेड्स हुए तो केरल में, जैसे आपने कहा, उनका गढ़ माना जाता है, लेकिन जब रेड्स हुए और उन्होंने एक हिंसात्मक, जबरदस्त हिंसात्मक हड़ताल वहां की, तो केरल सरकार ने मौजूदा कानून के आधार पर बहुत सख्त से सख्त कार्रवाई करके इन सबको बंद कर रखा है
जी,
सब जेल में। हमने इंतजार तो नहीं की कि बैन आएगी तब हम सख्त कार्रवाई करेंगे। तो कानून है, सवाल यह है कि आपकी राजनीतिक मुद्दा क्या है? अगर आप वाकई में संविधान की बचाव की बात कर रहे हैं, प्रशासनिक कार्रवाई सख्त कीजिए, पॉलिटिकल संघर्ष कीजिए इनको अलग थलग करने के लिए जनता में, राजनीतिक हस्तक्षेप कीजिए, लेकिन आप इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि ऐसे बहुत सारे संगठन हैं जो धर्म के नाम पर बनाए गए हैं, जैसे मैंने जिक्र किया जन जागृति या
जी, जी।
संस्था, सनातन संस्था, जिनकी सदस्य चार्जशीट में उनका नाम है, गौरी लंकेश की हत्या में, दाभोलकर की हत्या में, गुलबर्गी की हत्या में, ये सब इनके नाम लिखे हैं, मालेगांव केस में, मतलब बहुत सारे। मैं उस बात पे सहमत नहीं हूं जो कुछ हमारे विपक्ष के साथियों ने कहा कि इन पर पाबंदी लगाए, उन पर क्यों नहीं लगाए। सवाल ये नहीं है, पाबंदी क्या हमारे देश की जो प्रॉब्लम्स है कि ऐसे संस्थाएं हमारे देश में हैं जो संविधान के खिलाफ लगातार काम कर रहे हैं
जी,
उनके बारे में क्या सरकार की सामान्य समझ और विचार है? अनफॉर्चुनेटली नहीं है।
तो आप कह रही हैं कि
शक होता है
जी, आप कह रही हैं कि इस समय जो मंशा है उस पर शक होता है और ये पॉलिटिकल है और आप बैन के फेवर में नहीं है किसी भी संस्था पे प्रतिबंध लगाने के।
देखिए, इस समय मैं कह रही हूँ
जी,
बैन से इस समस्या का हल नहीं होगा।
हाँ,
पीएफआई घोर एंटी कम्युनिस्ट है
जी,
तो इसलिए हम एक कम्युनिस्ट के नाते हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे कार्यों के ऊपर कितना जबरदस्त हमले इन लोगों ने किए हैं। लेकिन फिर भी मैं कहती हूं, बैन करके वो दूसरे नाम पर जब भौतिक स्थिति बनी हुई है, और ये भौतिक स्थिति ये बनी हुई है कि हिंदुस्तान में ऐसे बहुत सारे संस्थाएं हैं जो एक नजर से अगर आप देखा जाए तो उनको सत्ता का समर्थन भी मिल रहा है क्योंकि उनके नेताओं के खिलाफ पेट्रनेज है, प्रोटेक्शन है, वो जो मर्जी करे, वो जो मर्जी कहे।
वृंदा जी, इस समय फिर इस प्रतिबंध को का मकसद क्या लगता है आपको?
देखिए, सरकार जो मकसद बता रही है कि ये देश के हित में है, मैं समझती हूँ ये मकसद प्रतिबंध से नहीं होगा। पहले बात। दूसरी बात, अगर वाकई में सरकार सीरियस है संवैधानिक प्रावधान को मजबूत करने के लिए, तो मैं समझती हूँ कि जितने भी इस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशंस है, जहां जहां इस प्रकार की हेट स्पीच होती है, इस प्रकार की रेडिकलाइजेशन की प्रयास हो रहा है, कोई भी धर्म के नाम पर हो, किसी भी धर्म के नाम पर हो
जी,
आप उन सब के खिलाफ प्रशासनिक सख्त कार्रवाई करें, जनता के बीच एक पॉलिटिकल मैसेज जाए कि कोई भी संगठन इस प्रकार का काम करे जो उग्रवादी व्यूज के हैं, जो वायलेंट एक्टिविटीज आधारित है, जो समाज को धर्म के नाम पर बांटना चाह रहे हैं, आप सबके खिलाफ कानून जो मौजूद है उसके खिलाफ आप कार्रवाई कीजिए।
बिल्कुल,
और देश के हित में ये काम होगा। और ये सो जब ये सब कुछ है, इससे जो वो कह रहे हैं कि उनका उद्देश्य ये है, अनुभव ये बता, आरएसएस पर पाबंदी लगी थी, क्या आरएसएस खत्म हुई?
तो आप
तो इसलिए वो मेरा पॉइंट है, पॉलिटिकल मामले को प्रशासनिक की कार्रवाई की जरूरत है, और पॉलिटिकल संपूर्ण समझ, संवैधानिक समझ के आधार पर आपको पॉलिटिकल कार्रवाई करना चाहिए, जो आप नहीं करना चाहते।
बिल्कुल, तो ये नियत सही होनी चाहिए कार्रवाई करने की, और कानून काफी है देश में जिसमें प्रशासनिक कार्रवाई की जा सकती है, और जनता के बीच एक संदेश भी जाएगा कि सख्ती से कार्रवाई की जा रही है, चाहे किसी भी संगठन के कोई भी व्यक्ति हो, जब अनलॉफुल गतिविधि में शामिल होते हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। धन्यवाद आपका वृंदा खरात अपनी बात हमारे साथ साझा करने के लिए, आपके क्या इस पर विचार है। और हमारे साथ इस वक्त और जुड़े हैं नवल किशोर जो प्रवक्ता है आरजेडी के, और आलोक वत्स नेता है बीजेपी के। धन्यवाद आप दोनों का इसमें शामिल होने के लिए। नवल किशोर जी, अभी अभी हमने वृंदा करात को सुना, आपकी पार्टी से लालू प्रसाद ने कहा कि आरएसएस को भी बैन कर देना चाहिए, ऐसे बहुत सारे संगठन हैं। वृंदा करात जी का व्यू था कि आप प्रतिबंध लगाएंगे अगर, तो प्रतिबंध तो पहले भी लगे हैं, उससे कुछ खास जो उद्देश्य है वो हासिल नहीं होता। और जहां तक प्रतिबंध लगाने की बात है, अगर पीएफआई पे प्रतिबंध विपक्ष जो है वो लगातार कह रहा है कि प्रतिबंध इस पे लगाया गया तो आरएसएस पे क्यों नहीं, पर आपको क्या लग रहा है कि आरएसएस और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है पीएफआई, क्या इसकी तुलना सही है?
ठीक है, सबसे पहली बात तो ये है कि जिस आधार पे कि अतिवादी संगठन है, संविधान में बात नहीं मानता है, धार्मिक उन्माद फैलाता है, सामाजिक वैमनस्य फैलाता है, तो ये सारा काम और सारे आरोप तो जो गतिविधि है वो आरएसएस में भी दिखता है। और ये कोई मैं नहीं कर रहा हूं, पूरा आप ऐतिहासिक अनुभव देख लीजिए, तो ये सब चीज है उनमें। और जो तीन 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 बार जो प्रतिबंध लगे हैं और प्रतिबंध लगने के बाद हटे हैं, लेकिन ये आरोप तो उन पे है ना। सरदार पटेल जो पहले गृह मंत्री थे, उन्होंने गांधी जी की हत्या के बाद जो प्रतिबंध लगाए वो तो रिकॉर्ड में है। तो जिस तरह का इसका भी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यही है। आज अगर सरकार उनके क्रियाओं को या वो जो करते हैं, धार्मिक उन्माद फैलाते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं, पूरा एक एक समाज को जिसकी संख्या और संवैधानिक तरीके से जिनकी स्थिति है, उनके खिलाफ में बोलने में कभी शर्म नहीं करते हैं, तो वैसे संगठन के विषय में लालू जी ने कहा कि अगर ये है, इस तरह की कार्रवाई हो रही है, तो सारे सारे संगठनों में, केवल आरएसएस ही नहीं, अतिवादी विचार के, अतिवादी मंशा के, संविधान विरोधी, समाज में वैमनस्य फैलाए, धार्मिक उन्माद फैलाए, इन तरह के संगठनों को
आप कह रहे हैं कि पीएफआई पर प्रतिबंध सही है, लेकिन पीएफआई पे प्रतिबंध लगता है तो दूसरे संगठनों पे भी लगना चाहिए, और अगर ऐसा होता है तो ठीक है, नहीं तो आप क्या कह रहे हैं कि सिर्फ ये एक टारगेट हो रहा है एक संगठन को?
नहीं, बिल्कुल, देखिए, अगर किसी खास संगठन को, जिसकी कई सारे उदाहरण है, कई सारे ऐसे समय है जबकि समाज में देखे गए हैं कि हिंदू मुस्लिम उन्होंने किया है, समाज में टकराव या तनाव या उन्माद पैदा किया है, तो ये तो कारण नहीं हो सकता है ना, कि चूंकि भाजपा के पीछे प्रत्यक्ष रूप से ये लगे हुए हैं, ये लाख कहें कि प्रचारक हैं, लेकिन सत्ता के प्रचारक भी हैं, भाजपा के प्रचारक भी हैं, इससे कोई नजर ये नहीं कर सकता है। तो अगर इनके गतिविधियों को आज के डेट में कोई तहकीकात नहीं कर रहा है, कोई जांच नहीं कर रहा है, उस तरह का कार्रवाई नहीं कर रहा है, ऐसे कई सारे उदाहरण देखे गए हैं, वीर हिंसा हो, चाहे तमाम तरह के जो घटनाएं घटित हुए हैं, तो इसका मतलब है कि सरकार को, चूंकि ये सरकार के लिए प्रचार करते हैं, सरकार के समर्थक हैं, प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से चारों तरफ से हैं, ये बेशक कहें कि सांस्कृतिक संस्था है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक है, लेकिन यह कौन नहीं जानता है इस देश में कि भाजपा के पीछे चट्टान के तरह खड़ी है आरएसएस। तो आरएसएस अगर मान लीजिए कोई अतिवादी काम आज के डेट में भी कर रही है तो सरकार उसे कैसे पकड़ेगी, क्योंकि भाजपा और संघ का ऐसा मिलावट है कि उस पर कार्रवाई करना आसान नहीं है।
आलोक जी, आपकी प्रतिक्रिया इसके ऊपर, ये जो तुलना की जा रही है आरएसएस की और पीएफआई की, इस पर क्या कहेंगे? क्या इन दोनों की तुलना, विपक्ष कह रहा है कि इस पर प्रतिबंध तो इस पे भी प्रतिबंध इसके खिलाफ? जी बोलिए।
देखिए सर, मैडम, मैं आरजेडी के प्रवक्ता का जो चश्मा है वो किस चश्मे से ये कंपेयर कर रहे हैं आरएसएस को पीएफआई से? कहां निर्मल गंगा और कहां गंदा नाला? क्या ये भूल गए हैं आरएसएस के योगदान और बलिदान को कोरोना के समय, या कभी भी जब भारत पे बाढ़ और इस तरीके का मुसीबत आया, कौन सा पीएफआई का ऑर्गेनाइजेशन वहां पर आके मदद कर रहा था? जान पर खेलकर आरएसएस के लोगों ने यहाँ के लोगों को बचाने का काम किया। धर्म समुदाय से उठकर उन्होंने कभी नहीं देखा कि मुस्लिम को बचा रहे हैं बाढ़ से या हिंदू को, या कोरोना में मुस्लिम को दे रहे हैं सहायता या मुसलमान को। पीएफआई ने कब ऐसा काम किया है और ये उसको पीएफआई से कंपेयर कर रहे हैं? मैं तो इनकी सोच पर हैरान हूं कि इनके नेता और इनकी सोच कितनी गिरी हुई है। एक राष्ट्रभक्त ऑर्गेनाइजेशन को आप एक राष्ट्रद्रोही ऑर्गेनाइजेशन से कंपेयर कर रहे हैं? कौन से दंगे में आरएसएस का हाथ आया? 60 वर्ष कांग्रेस का रेजिम रहा, कौन से दंगे में उन्होंने आरएसएस को घेरा और कौन से दंगे में उन्होंने आरएसएस को आरोपित किया? कौन से मुसलमान लीडर है जिसको आरएसएस लोगों ने मर्डर किया या उनका उनको शूट किया और उनका नाम आया उसके अंदर? लेकिन इनके तो कानपुर में, किन्नौर में, सब जगह, पटना में प्राइम मिनिस्टर के प्रोग्राम में जमायत हिंद नहीं वो गजवाए हिंद बनाने का पूरा फॉर्मूला मिल गया। उसके बाद जहां जहां छापे पड़े हैं,
नवल किशोर जी, आप इस पर अपनी प्रतिक्रिया देंगे कि डॉक्यूमेंट 2000
प्रतिबंध होना चाहिए?
नवल किशोर जी, डॉक्यूमेंट 2047 की बात हो रही है, जब भारत को, आलोक जी एक मिनट, आप एक सवाल पूछ रही हूँ, जवाब सुन लीजिए। नवल किशोर जी, आप किस तरह डिफेंड कर सकते हैं पीएफआई को, जिसके पास से बिहार में ही एक दस्तावेज बरामद हुआ जिसका डॉक्यूमेंट 2047 जिसमें गजवाए हिंद बनाने की बात हो रही है और अलग अलग जगह पे बड़े बड़े नेताओं को टारगेट करने की बात हो रही है, टेरर फंडिंग, विदेशों से उनके पास टेरर फंडिंग आती है और इसके आधार पर उन्हें बैन किया गया है, तो ये जो तुलना है, क्या आप कह रहे हैं कि पीएफआई इस तरह की गतिविधियों में शामिल नहीं है?
नवल के अलग 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 मुद्दे हैं। पीएफआई के विषय में जो सरकार जांच कर रही है और जिसके आधार पर कार्रवाई कर रही है, तो जांच के आधार पर कार्रवाई कर रही है, वो जितनी बात कह रहे हैं उस बात सही भी हो तो उसको उसकी जानकारी है और उस पर बैन कर रही है।
आलोक जी, आप 1 मिनट के लिए जवाब सुन लीजिए, फिर आऊंगी आपके पास। आलोक वत्स
भी नहीं सकते हैं,
आलोक वत्स एक बार बात सुन लीजिए दूसरे की, फिर मैं आपके पास आऊंगी, आपने अपनी बात कही। जी नवल जी बताइए।
देखिए, मैं तो इनके बेचैनी का जवाब नहीं दे सकता हूँ, मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि इनकी सरकार या भारत सरकार कह लीजिए, अगर किसी संगठन पे कार्रवाई कर रही है और उस कार्रवाई का आधार ये है कि उनकी गतिविधियां अतिवादी हैं, संविधान विरोधी हैं, समाज विरोधी हैं, टेरर फंडिंग है, तमाम तरह की चीजें हैं, जांच के आधार पर उस पर कार्रवाई में बैन किया है, ठीक है, लेकिन उसके साथ में ये कैसे कह सकते हैं कि हम सामाजिक कार्य करते हैं लेकिन बंदे मातरम कहते हैं और बंदे को मारते हैं? ये कैसे जस्टिफिकेशन है कि आप बंदे राष्ट्र, आप कहते हैं कि हम राष्ट्रभक्त हैं, देशभक्त हैं और दूसरे को कहते हैं देशद्रोही हैं? ये कौन सा राष्ट्रभक्ति है?
सिर्फ राष्ट्रीय संविधान को नहीं मान रही, पीएफआई में टेरर फंडिंग है, पीएफआई के पास से एक गजवाए हिंद बनाने का डॉक्यूमेंट मिलता है, तो ये सब सबूत इकट्ठा हुआ इंटेलिजेंस एजेंसी
संविधान
द्वारा। जी,
संविधान की प्रतियां तो आरएसएस ने भी जलाई है, उनके कार्यकर्ताओं ने ही जलाया है, ये झूठ है क्या? वहां पे भारतीय झंडा उनके ऑफिस में नहीं था, ये झूठ है क्या? संविधान में इनका विश्वास नहीं, संविधान के आधार पे जो आरक्षण दिए जाते हैं, मंडल कमीशन जब लागू हुआ तो भाजपा क्यों बाहर आई उसे?
तो ठीक है, नवल जी, पर एक बात बताइए, अभी आप लोग इतना शोर कर रहे हैं कि इसको प्रतिबंध क्यों लगाया गया या इसको लगाया गया, तो फिर लालू जी ने तो कहा कि प्रतिबंध ठीक है लेकिन आरएसएस को भी प्रतिबंध लगा दिया जाए, यानी कि जब पीएफआई पे प्रतिबंध लगना ठीक है तो पहले जब सरकार बीजेपी की नहीं थी उस समय कार्रवाई क्यों नहीं हुई इसके ऊपर में? कार्रवाई होनी चाहिए थी, ये सवाल उठाया जा रहा है, अभी बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि आप लोग कहां थे, आप लोग इन द सेंस की एक
नहीं, देखिए जी, कार्रवाई तीन भारत के इतिहास में 3 बार कार्रवाई होना क्या यह साबित नहीं करता है कि उस तरह के कार्यों में ये लिप्त है, उस तरह की इनकी राजनीति है, उस तरह की इनकी सोच है। अब आप ये कह रहे हैं कि हमने
पीएफआई पे भी आप लोगों ने कार्रवाई नहीं की, तब पीएफआई तो संगठन तो है ना पहले से, 2007 से तो संगठन ये बन गया था।
देखिए अभी मैं सुन रहा था, ये भी तो हो सकता है कि जिस तरह का पिछले 8 साल में पूरे देश का माहौल खराब किया गया है, हो सकता है कि ऐसे अतिवादी एक अतिवादी कदम का रिएक्शन दूसरा अतिवादी कदम हो सकता है, तो हो सकता है कि जिन जिन कारणों से इतना उनका प्रसार हुआ होगा, ऐसी सोच डेवलप हुई, जिस देश में संवैधानिक आधार पे हर एक धर्म के लोगों का रहने का अधिकार है और पिछले 70 सालों से ये चीज है, तो अगर कोई अतिवादी कदम के आधार पे पिछले 8 साल में आपने देखा होगा पूरे देश के जगह जगह से जो घटनाएं घटित हुई हैं उसमें एक खास कौम को कम्युनिटी को टारगेट तो कर ही रहे हैं, जो भाजपा आरएसएस के विचार पे अगर नहीं चलती।
पर आप आरएसएस की बात करते हैं, आरएसएस पे भी मोहन भागवत जो हैं वो मदरसे जा रहे हैं, वो तो सर्वधर्म धर्म को अपनाने की बात कर रहे हैं, वो मदरसा गए, वो यहाँ पे मस्जिद गए, वो मौलानाओं से मिल रहे हैं, इस तरह की आउटरीच है जी।
लेकिन एक बात और भी ध्यान रखना चाहिए, अगर वो जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं, हो सकता है कि 2024 सामने आ रहा होगा, नहीं तो 300 से ज्यादा सांसद और 1000 से ज्यादा एमएलए में एक भी मुस्लिम कौम के लोग नहीं है, 20 करोड़ जनता का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, 15% जनता का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, आप इस मुल्क का जो चरित्र है उसमें आप एक बहुत बहुमत होने के आधार पे एक अल्पसंख्यक को पूरी तरह से
आप कह रहे हैं कि ये सिर्फ जो है चुनाव के लिए किया जा रहा है ये आउटरीच, पर अब चुनाव से इसका, आलोक जी आप कुछ आप कहना चाहते हैं इसके ऊपर। दूसरी मैं आपसे ये बात पूछना चाहती हूँ कि जो प्रतिबंध लगाए गए हैं तो बहुत सारे और भी संगठन है पीएफआई के जैसे, जहां पे जिसपे प्रतिबंध लगा है उसमें एक इमाम काउंसिल भी है, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल, जहां तक हम जान रहे हैं तो ये तो वही है मौलाना इलियासी साहब का संगठन, जहां पे अभी मोहन भागवत गए थे मिलने के लिए, तो वो वहां पे जाते हैं और उसके ऊपर प्रतिबंध भी लगता है, कुछ समझ में नहीं आया। ये
देखिए नगमा जी, कहीं कम से कम भागवत जी गए तो इनसे मिलने, मुसलमान के कौन से धार्मिक गुरु आए हैं आरएसएस के कैंप में मिलने मिलाने से आप क्या कर रही हैं?
भागवत जी कौन से धर्म गुरु हैं?
प्रतिबंध लगता है बाद में।
भागवत जी कौन से धर्म गुरु
हैं? एक मिनट तो आप मुझे
नवल किशोर सुन लीजिए जी, बोलिए आलोक जी, बोलिए आलोक।
नगमा जी, मैं आपके घर आता हूँ आपसे मिलने, तो मुझे क्या मालूम आप क्या करती हैं?
अरे कैसे नहीं मालूम, आपको पता करके आना चाहिए।
अरे पता करके कोई किसी से मिलने जाएगा?
बिल्कुल जी, आप जा तो जानेंगे मुझे, आप पता करके जाएंगे कि आप मिलने जा रहे हैं, आप ऐसे पब्लिक लाइफ में।
वो वहाँ गए, वो मिल के आए, और जो हमारे एजेंसीज है एनआईए ईडी और सीबीआई, उनको ऐसे सूत्र हाथ लगे जिसमें इस तरीके की कवायद हो रही थी जो हिंदुस्तान को अस्थिर करने की, हिंदुस्तान को मुस्लिम राज्य बनाने की, उसके तहत उनको पीएफआई से जोड़कर उनके जो 8 संगठन को प्रतिबंधित किया गया है उसमें से एक संगठन ये भी है, इसके प्रमाण।
आलोक जी एक और सवाल, एक आखिरी सवाल कि प्रतिबंध, जैसा वृंदा कर रहा था अभी सवाल उठा रही थी, उनका कहना है कि लेफ्ट के तो बहुत खिलाफ है ऑर्गेनाइजेशन, और उसने काफी हिंसा भी की है इनके कार्डर्स के खिलाफ, बावजूद इसके वो कह रही है कि प्रतिबंध से क्या होगा, सीमी प्रतिबंधित किया गया, दूसरा संगठन खड़ा हो गया, कानून काफी है, कार्रवाई करने की नियत हो तो कार्रवाई हो सकती है कार्यकर्ताओं पर।
ये आपकी बात से मैं 100% सहमत हूँ। सीमी बनी, सीमी पर बैन हुआ, पीएफआई उससे भी बृहत्तर रूप में खड़ा हो गया
जी।
लेकिन आप एक बात मत भूलिएगा, ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सरकार है। चुप रहिए बीच में, आप मत बोलिए। ए अमित शाह और नरेंद्र मोदी की सरकार है, इनके इनके छाती में कील ठोक कर या तो इनको देशभक्त बना दिया जाएगा,
क्या कुछ नया हासिल हो पाएगा ये देखना है। धन्यवाद आप दोनों का इस पर बात करने के लिए, अपनी अपनी बातें रखने के लिए। पीएफआई पे प्रतिबंध लगना चाहिए इससे कोई इनकार नहीं कर रहा, पर यह भी सवाल है कि प्रतिबंध से क्या इस तरह की आतंकी गतिविधियां, अगर ये आतंकी गतिविधियों में लिप्त हैं तो वो रुक जाएगा, या देश के कानून काफी हैं पर्याप्त हैं जैसा वृंदा करात कह रही थी, जिसके आधार पे कार्रवाई होनी चाहिए सख्ती से, ताकि जनता के बीच एक संदेश जाए कि कोई भी जो इस तरह की गतिविधियों में शामिल होगा वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्राइम टाइम एक ब्रेक ले रहे हैं हम, ब्रेक के बाद त्योहारों का मौसम शुरू हो रहा है, इससे ठीक पहले केंद्रीय कैबिनेट ने जरूरतमंद परिवारों के लिए, कर्मचारियों के लिए तोहफा दिया है। त्योहारों का मौसम शुरू हो रहा है। इससे ठीक पहले केंद्रीय कैबिनेट ने गरीब जरूरतमंद परिवारों, सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारियों के लिए कई अहम फैसलों का ऐलान कर दिया। सरकार ने गरीब परिवारों के लिए मुफ्त राशन से जुड़ी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि को 3 महीने और बढ़ा दिया है। इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारियों का महंगाई भत्ता भी 1 जुलाई से 4% बढ़ गया है।
दुनिया की सबसे बड़ी खाद्य सुरक्षा योजना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 3 महीने और चलेगी। इसकी अवधि 30 सितंबर 2022 को खत्म हो रही थी। बुधवार को कैबिनेट ने इसे दिसंबर 2022 तक बढ़ा दिया। 80 करोड़ गरीब लोगों को मुफ्त में 5 किलो राशन देने की ये योजना अप्रैल 2020 से लागू है। इस योजना पर अगले 3 महीने में 44,762 करोड़ रुपए खर्च होंगे। दिसंबर 2022 तक इस योजना पर कुल 3,91,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सरकार का मानना है कि देश में गरीब जरूरतमंद परिवारों का एक बड़ा तबका है जो अब भी कोरोना के असर से पूरी तरह से नहीं उबर पाया है। ये भी महत्वपूर्ण है कि ये फैसला ऐसे वक्त पर लिया गया है जब देश में महंगाई दर 7% के आसपास बनी हुई है और बढ़ती महंगाई की सबसे ज्यादा मार गरीब और जरूरतमंद परिवारों पर पड़ रही है।
पहले से छठे चरण तक 3,45,000 करोड़ रुपया अब तक इस पे व्यय हुआ है, अनुमानित जो सब्सिडी मिली है, और सातवें चरण में 122 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न 80 करोड़ से ज्यादा जरूरतमंद गरीबों को मिलने वाला है और कुल मिलाकर लगभग 3,91,000 करोड़ रुपया इसके ऊपर खर्च आएगा।
बुधवार को कैबिनेट ने त्योहारों से ठीक पहले केंद्र के कर्मचारियों और पेंशनधारियों का महंगाई भत्ता भी 4% बढ़ाने का फैसला किया, जो 1 जुलाई 2022 से लागू होगा। इससे सरकार पर सालाना कुल 12,852 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा।
मंत्रिमंडल ने 1 जुलाई 2022 से दे केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 4% की दर से महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की अतिरिक्त किश्त जारी करने की मंजूरी दी है।
साथ ही कैबिनेट ने नई दिल्ली, अहमदाबाद और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई रेलवे स्टेशनों का नए सिरे से कायाकल्प और विकसित करने की योजना को भी मंजूरी दे दी। इस पर कुल 10,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
3 जो देश के सबसे बड़े स्टेशन है, नई दिल्ली, मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस और अहमदाबाद स्टेशन, ये 3 जो बहुत बड़े स्टेशन हैं, इन स्टेशन के लिए आज कैबिनेट ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में 10,000 करोड़ रुपए इनके लिए सैंक्शन हुए।
दुनिया की सबसे बड़ी खाद्य सुरक्षा योजना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि 3 महीने बढ़ाने के फैसले का एक आर्थिक पहलू भी है और राजनीतिक पहलू भी। निश्चित तौर पर बढ़ी हुई महंगाई के इस दौर में करीब 80 करोड़ लाभार्थियों को इस योजना से कुछ राहत जरूर मिलेगी, लेकिन साथ ही ये भी महत्वपूर्ण है कि इस योजना की अवधि को 31 दिसंबर तक बढ़ाया गया है, जब तक गुजरात और हिमाचल प्रदेश में चुनावी प्रक्रिया के पूरी होने की उम्मीद है। दिल्ली से पूजा आर्या के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।